समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज हमारे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम का विषय है डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और निवारक उपाय। कार्यक्रम में डेंगू संक्रमण के उपाय, उपचार के तरीके और विभिन्न पहलुओं के बारे में श्रोता अपने सवालों के जवाब हमसे जान सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले मैं उनका परिचय करवाऊं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल दुनिया में करीब 3 करोड़ से अधिक लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। इसका कारण ये कहा गया है कि खराब शहरी स्वच्छता, बढ़ती जनसंख्या और वातावरण में वर्षा और या नमी या तापमान में उतार चढ़ाव के कारण भारत में डेंगू के मामलों में 30% के करीब वृद्धि देखी गई है। और अब मैं परिचय कराऊं, आज हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
नमस्कार चंद्रिका जी, आपके माध्यम से लोगों से जुड़ने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद
जी। डेंगू के बारे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार समय समय पर जागरूकता संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाती है। डेंगू के संबंध में क्या लक्षण हैं, बचाव कैसे हो और अन्य क्या उपाय हो जैसे हम उससे बच सकते हैं, कैसे जानें कि ये डेंगू का बुखार है, ये सभी बातें हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और श्रोता हमें इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल हो या जानकारी चाहे तो हमें जरूर फोन करें, हमसे बात करें। कार्यक्रम आप ही का है, आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। हमारा नंबर है 0112331444 2371717106 और 2342101050। इसके आगे दिल्ली का STD कोड 011 जरूर लगाएं। एक व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बताते हैं, इस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, 9289094044। दिस इज अ बायलिंगुअल प्रोग्राम एंड यू कैन आस्क यूर क्वेश्चंस इन हिंदी और इंग्लिश। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन के DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है और सबसे पहले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, धर्मवीर हैं दिल्ली से। हेलो धर्मवीर जी।
नमस्कार जी।
नमस्कार,
मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
जी। बोलिए
डॉक्टर। नमस्कार।
नमस्कार।
आपकी अथक मेहनत के बाद हमने कोरोना का इंजेक्शन ले लिया था, पा लिया था। क्या इतना समय बीत गया, डेंगू का जो बीमारी इतने टाइम सालों से आ रही है, क्या डेंगू के अभी कोई इंजेक्शन की कोई बनाने की उम्मीद है? और मलेरिया का इंजेक्शन भी नहीं बन पाया, इन दो बातों पे जरा आप हमारे को
जी। इनका यह प्रश्न है मलेरिया और डेंगू दोनों के वैक्सीन के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के समय में कई सारे कैंडिडेट वैक्सीन पर शोध चल रहा है और हम लोग इस वैक्सीन के बनने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी के समय में अगले 1-2 वर्षों में यह वैक्सीन आम लोगों के उपयोग के लिए अभी नहीं आ पाएगा। यह अभी परीक्षण के दौर पर है, लेकिन जरूर इस पर काम चल रहा है।
देखिए, इतना तो हम सभी जानते हैं कि डेंगू मच्छर से होने वाला रोग है और इसके लक्षण में बुखार है और शरीर पर दाने या सिर दर्द और जोड़ों में दर्द भी शामिल है, लेकिन ये कुछ मामलों में बहुत गंभीर हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं अभी आपसे जानना चाहूं तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हम ये बताएं कि इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं।
देखिए, डेंगू जैसा आपने बताया कि डेंगू बरसात के बाद के सीजन में बहुत तेज बुखार के साथ आता है। जो पहला बुखार होता है वो बहुत तेज, 102, 103, 104 कई केसेस में जो है इतना ज्यादा बुखार हो जाता है, और बुखार के साथ साथ तेज सर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द और बदन में बहुत तेज दर्द होता है शुरू के समय में। जो इसके शरीर में रैशेस आते हैं वो रैशेस 2-3 दिनों के बाद, 4th-5th दिन में ऐसा होता है, लेकिन इसके प्रमुख लक्षणों में शरीर में तेज दर्द और तेज बुखार का आना, सरदर्द का होना, यह रहता है।
पारिस्थितिकी जिसको हम पर्यावरण कहते हैं
जी,
उस पर डेंगू कितना निर्भर है?
जी, जैसा आपने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में बताया कि ये पोस्ट मॉनसून डिजीज है, मॉनसून के बाद ऐसे ऐसे देश जिसमें कि उष्णता के साथ साथ जो है वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा रहती है, ये सारे जो ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें कि मच्छर के प्रजनन के लिए बहुत सारा कंड्यूसिव रहता है, तो जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। और तो इसी समय में जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी मच्छर के काटने से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब इसी सीजन में ज्यादा होता है। और वो जो पोस्ट मॉनसून यानी बारिश के खत्म होने के से लेकर के जो ठंडी की शुरुआत का जो समय रहता है वैसे समय में ज्यादा देखने को मिलता है।
डॉक्टर साहब, ये कैसे पता लगेगा कि ये बुखार जो है वो डेंगू से ही हो रहा है?
ये काफी अच्छा सवाल है। देखिए, डेंगू के समय में जो इस सीजन में जो बुखार के जो अन्य दूसरे कारण होते हैं, जो दूसरे ट्रॉपिकल फीवर हैं, चाहे मलेरिया हो गया या स्क्रब फीवर, स्क्रब टाइफस हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, या फिर जो कॉमन फ्लू के से जो जिसे लोग ये कंफ्यूज करते हैं, यहां ये बात जानना जरूरी है कि डेंगू भी और दूसरे बुखारों की तरह यह भी एक वायरस की वजह से होता है। तो एक तरह से यह वायरल फीवर है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम लोग वायरल फीवर कहते हैं वो इन्फ्लुएंजा या फ्लू वाला वायरस होता है। तो डेंगू में जो फीवर होता है वो फर्स्ट एपिसोड ऑफ फीवर होता है, वो वहीं बहुत ज्यादा होता है। जैसे पहले ही फीवर जो होगा 102, 103 होगा, लोगों को बहुत तेज जारा कपकपी के साथ बहुत तेज बुखार आएगा, शरीर में बहुत तेज गर्मी, ये बहुत तेज दर्द होगा, सर में दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा। और इसकी खासियत एक ये रहती है कि ये किसी भी तरह से कॉमन एंटीपायरेटिक जो पैरासीटामोल की दवाई जो दी जाती है उसके देने के बाद भी यह बुखार ठीक नहीं होता।
तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या ब्लड टेस्ट, जैसे मलेरिया के लिए भी ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए भी ब्लड टेस्ट?
हाँ, इसके लिए भी ब्लड टेस्ट किया जाता है। यह एक खून में एक खास तरह का एंटीजन जिसे हम लोग NS1 एंटीजन कहते हैं, वो उसकी जांच की जाती है। जो ये यह बुखार शुरू होने के बाद 12 घंटे के बाद से लेकर के चौथे दिन के बुखार तक में यह एंटीजन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है।
ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये इसका ब्लड टेस्ट कैसे, कहां, कब करवाना है, इस पर बात करेंगे। इस बीच एक श्रोता है दिल्ली से, रघुवेंद्र। हेलो रघुवेंद्र जी, बोलिए।
हाँ नमस्कार मैडम।
नमस्कार।
नमस्कार।
आमंत्रित गेस्ट को भी सादर प्रणाम।
सादर प्रणाम।
सर मेरा सवाल ये है कि जब भी डेंगू के बारे में एडवाइजरी जारी की जाती है
जी,
तो उसमें ये कहा जाता है कि अपने कूलर में पानी बदलते रहो, पानी खड़ा मत होने दो, ऊपर छत पे अगर टायर में कहीं पानी खड़ा है तो उसको भी हटा दो। लेकिन जो हमारे घरों में एसी होते हैं, चाहे वो विंडो हो चाहे स्प्लिट हो,
जी,
उसमें भी जो पानी गिरता है वो भी एक बकेट में खड़ा रहता है
जी,
तो उसके बारे में कोई एडवाइजरी नहीं दी जाती, और साथ में MCD जो है वो इसको प्रॉपरली टैकल नहीं करता, जिसकी वजह से ये डेंगू ज्यादा फैलता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कृपया बताने का कष्ट करें।
देखिए, पानी जहां कहीं भी जमा हो, चाहे वो कूलर के अंदर जमा हो या छतों छत के बाहर हो, गमले के अंदर में हो, या बोतल जो कटे हुए बोतल हो, या ये टायर हो, या आसपास में कहीं भी पानी जमा हो, वहां पर जो है वो मच्छर जो है वो पनप सकता है और उसका प्रजनन हो सकता है।
मैं इतना कहना चाहूंगी आपसे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर के आसपास कम से कम इतना, या अपने मोहल्ले या RWS जो है आजकल, उन सबकी भी एक कॉमन एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ये देखें कि भाई ये बरसात के बाद का मौसम है, नमी ज्यादा है मौसम में, और डेंगू की सरकार द्वारा सतर्कता के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, तो हमें करना और सावधान रहना है, और ये देखना है कि घर के आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा न होने दें। ये हमारी हम सबकी एक कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है।
मूल तौर पे शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि कूलर पर तो ज्यादा नकेल कसी जाती है, पेनल्टी भी होती है, लेकिन AC पर क्यों नहीं? तो मैं बड़ी जिम्मेदारी,
बाल्टी में पानी है तो उसको पौधों में डाल सकते हैं,
चाहे वो AC के कारण जमा हो, या कई बार तो ऐसा भी देखा गया है जो बाथरूम में या फिर टॉयलेट में उसके बगल में भी कहीं अगर जमीन जो है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो, वहां पर भी अगर पानी जमा हो जाए तो उसमें भी मच्छर पनप सकते हैं। तो किसी भी वजह से हो उसे देखना, उसे जो है वो ठीक करना जरूरी है। देखिए, एक बार पानी जमा होने से लार्वा बनने तक में 7 दिनों का समय रहता है, तभी मच्छर जो है, मच्छर का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप हर सप्ताह अगर आप एक दो घंटा अपने घर के आसपास अगर आप 200 मीटर का अगर आप एक रेडियस बना लें और आसपास देखें तो डेंगू जैसी तकलीफ वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी।
और मुझे लगता है सभी अगर जागरूक नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे तो इन बीमारियों से हम काफी हद तक दूर रह सकते हैं। मध्य प्रदेश से राजेश नेमा का फोन कॉल है। राजेश जी बोलिए।
जी मैं राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ।
जी स्वागत है आपका।
आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ और मेरे दो छोटे छोटे से प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग फैलने के लिए स्वास्थ्य विभाग कौन कौन से कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है और दूसरा प्रश्न है कि इन क्षेत्रों में साफ सफाई का क्या प्रमुख प्रबंध है इसके बारे में बताइएगा।
जी देखिए वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल का जो नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम है वो पूरे देश में चलाया जाता है और यह इसके संबंध में समय समय पर सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है। जैसा कार्यक्रम के शुरू में और बार बार हम लोग बताते रह रहे हैं कि इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से हम लोग जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ जरूरी है खुद को जिम्मेदार बनाने की और सतर्कता बरतने की।
जी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पंचायत के स्तर पर जिला स्तर पर साफ सफाई के कार्यक्रम चलते हैं और जो जिला औषधालय हैं या चिकित्सा केंद्र हैं वहां भी जा सकते हैं।
वहां पर भी जांच होती है और उसमें बचाव
के साधन। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जो ब्लड टेस्ट है खून की जो जांच है वो किस तरह से करवा सकते हैं अगर किसी को बुखार है।
जी विशेष तौर पर देखिए जो डेंगू के संबंध में जो जांच कराई जाती है इसके जांच करने में जो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया उसके लिए अलग अलग खून में एंटीजन देखे जाते हैं। इसका रैपिड डायग्नोस्टिक किट यानी कि खून लेकर के जो एक किट होती है उसमें डाल करके तुरंत इसका डायग्नोसिस हो सकता है। और दूसरा जो इसके जो मॉनिटरिंग के लिए इसमें जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होता है जैसे प्लेटलेट का काउंट हुआ उसको भी मॉनिटर करने के लिए और साथ ही साथ जो हीमेटोक्रीट होता है यानी कि आपके शरीर से जो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कैपिलरी में सूजन आ जाने की वजह से जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम रहता है वो कम हो जाता है जिसमें शॉक जैसी स्थिति हो जाती है तो वो उन चीजों को देखा जाता है जिसमें कि हम लोग सीबीसी देखते हैं और इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
ये व्हाइट ब्लड जो कोशिकाएं होती हैं जो रोग प्रतिरोधी होती हैं
हाँ जी
ये उनमें कमी आनी शुरू होती
है। उनमें कमी तो उनमें भी कमी आती है जिसे हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं लेकिन कमी मूल तौर पर जो है प्लेटलेट में आती है और थोड़ा सा जो हीमो कंसंट्रेशन कहते हैं यानी खून हमारे शरीर में जो खून में जो द्रव्य वाला हिस्सा होता है वो हमारी नलियों से निकल करके वो इंटरस्टीशियम में चला जाता है जैसे कि वो हमारे फेफड़े में या फिर हमारे गॉल ब्लैडर के में इडिमा के तौर पर या एसाइटिस कुछ जो पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है तो वो जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम होता है उसकी वजह से लोगों में शॉक जैसी स्थिति हो जाती है।
डॉक्टर साहब हम इस पर अभी चर्चा करेंगे प्लेटलेट्स वाली जो बात है।
जी जी
एक श्रोता का फोन है तो पहले इनको सुन लेते हैं। राकेश भारद्वाज है हमारे साथ दिल्ली से। राकेश जी बोलिए पूछिए अपना सवाल।
हेलो
हाँ जी बोलिए बोलिए।
मैं ये पूछना चाह रहा था कि जी हमें जैसे डेंगू का हमें कितने दिन बाद ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और कई मित ये हैं कि भाई ये तीन चार दिन बाद ही पता लगता है बुखार होने के तो हम कैसे माने कि भाई डेंगू के या तो शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं
जी जी
या कैसे पता लगेगा।
जी पूछने जी
इनकी बात इनके प्रश्न के दो अलग अलग भाग हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के बारे में पता कैसे चले इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया कि बिल्कुल शुरू में जो है वो डेंगू के बारे में पता चलने के लिए जो रोग के लक्षण होते हैं जैसा हमने बताया कि बहुत तेज बुखार होना शरीर में तेज दर्द होना
जोड़ों में दर्द
इसमें भी होता है लेकिन इससे ज्यादा चिकनगुनिया में ज्यादा होता है तो उस केस में अगर जो हम लोग देखते हैं तो वो रोग के लक्षण के आधार पर हम लोग संदेह करते हैं और इसके जांच करने के लिए जो खून में NS1 एंटीजन होता है अब खून में जो इसकी जांच के लिए जो है वो जैसे बुखार शुरू होता है तो शुरू होने के बाद 12 घंटे के बाद से लेकर के ये कभी भी इसका जांच किया जा सकता है। यहां मैं आप सबों को ये बताना चाहूंगा कि खुद से कोई जांच ना कराएं क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग जांच के अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और जो कोई भी डॉक्टर हैं वो आपको जांच की सलाह देंगे और जांच की रिपोर्ट में आप कोई भी अपनी आधी अधूरी जानकारी से अपने आप को दिग्भ्रमित न करें बल्कि डॉक्टर किसे आप ये
आपने ये जो बात कही इसी के संदर्भ में मैं कहना चाह रही हूँ कि प्लेटलेट्स के बारे में लोगों में एक घरेलू उपाय और कुछ मिथक भी हैं कि ऐसा कर लो ये कर लो वो कर लो तो उससे ठीक हो जाएगा, तो इस पर कितना निर्भर किया जा सकता है?
जी, जो प्लेटलेट के जो अन्य जो उपाय होते हैं प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने के पहले, उसके पहले मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि प्लेटलेट एक ओवररेटेड ओवर ग्लैमराइज्ड जो एंटिटी है डेंगू के अंदर में। डेंगू के अंदर में जो शुरुआती समय में जो प्लेटलेट कभी भी एक बहुत ज्यादा कंसर्न की चीज नहीं होती, प्लेटलेट काउंट देखते हैं और प्लेटलेट काउंट जो होता है वो मूल तौर पे कम होना शुरू होता है 5 दिनों के बाद, यानी जब बुखार ठीक होने लग को होता है। तो शुरू के समय में जो हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें हम लोग हीमेटोक्रीट जो वैल्यू होता है उसे हम लोग देखते हैं और वही महत्वपूर्ण रहता है। पहली बात ये हो गई, प्लेटलेट का कोई भी काउंट हो, कोई भी नंबर हो, बहुत कम में मैं कहूं कि वो 10,000 में एक आदमी ऐसा होगा जिसमें कि प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, और कोई भी नंबर जैसे प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता तभी पड़ती है जबकि प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम हो जाए। लेकिन आम जो अधूरी जानकारी हम देखते हैं जो सोशल मीडिया पर या आम बोलचाल में भी लोग जो हैं वो 1,00,000 से कम में ही बहुत ज्यादा पैनिकी हो जाते हैं और प्लेटलेट चढ़ाने के लिए वो ये बहुत ज्यादा वो ये चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा वो डॉक्टर्स को भी पुश करने लग जाते हैं। तो यहां ये बिल्कुल जरूरी है कि प्लेटलेट काउंट को लेकर के आपको पैनिकी नहीं होना, नंबर एक। और जब कभी भी ये काउंट 10,000 या 20,000 से कम हो तभी प्लेटलेट चढ़ाने के बारे में सोचें
जी।
और कोई भी जो देसी इलाज जैसे हम लोग कहते हैं, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज खाने के बाद प्लेटलेट का काउंट नहीं बढ़ सकता है। कोई भी भोजन हो, कोई भी फल हो, कोई भी और दूसरा नुस्खा हो, जैसे कि लोगों में ऐसी भ्रांति है कि पपीते के पत्ते को अगर हम लोग पीस करके उसका अगर रस पिए तो उससे प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है, या बकरी का दूध पिए तो प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, या गिलोय हो गया या कीवी हो गया इसे खाने से प्लेटलेट बढ़ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कई केसेस में हमने ये देखा है कि पपीते के पत्ते का रस पीने की वजह से लोगों को गैस्ट्राइटिस हो जाता है, लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पीने से फायदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
लेकिन हम ऐसी चीज ले सकते हैं या रोगी को दे सकते हैं जो मूंग की दाल का पानी है या नारियल का पानी है।
हाँ, जो आपने हाइड्रेशन के बारे में बात की है वो बुखार शुरू होने के बिल्कुल शुरू से ये देना चाहिए। जैसा मैंने आपको कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में भी बताया कि हाइड्रेशन को बिल्कुल हमें ठीक रखना है। उसके लिए जो कोई भी जो नॉर्मल पानी हो गया, इलेक्ट्रोल पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, यहाँ इस बात की नमक चीनी का घोल हो गया, ओआरएस का सॉल्यूशन हो गया, दाल का पानी हो गया। लेकिन इस बात के लिए हमें बिल्कुल समझ के रखना है कि फलों का रस बहुत ज्यादा न पिए। ऐसा अभी देखने को मिला है कि लोग डब्बा बंद फलों का रस और जो दूसरे जो ताजा फलों का रस है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से दो नुकसान होता है। एक तो इसकी वजह से डायरिया होने का खतरा रहता है और जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत रहती है उनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा शूट अप कर जाता है।
यानी पैनिक न हो किसी भी स्थिति से डॉक्टर से संपर्क।
बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे अगले श्रोता रायबरेली उत्तर प्रदेश से रमा शंकर वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। जी रमा शंकर वाजपेयी जी पूछिए सवाल।
सर नमस्कार।
नमस्कार।
मैं पूछना चाहता था कि जैसे देहाती क्षेत्रों में जो व्यवस्था नहीं हो पाती है तो मरीज भटकते रहते हैं, इस तरह से उसके लिए क्या प्रबंध किया जाए कि उसको जो है इससे राहत मिले?
जी इनका ये सवाल है कि वो यूजुअली जो इलाज की समुचित व्यवस्था न होने पर मरीज भटकते रह जाते। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी अलग अलग जगह पे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो अलग अलग रेफरल सिस्टम बनाए गए हैं, जैसे एडिशनल पीएचसी, फिर पीएचसी, फिर सीएचसी, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उसके बाद जो है वो मेडिकल कॉलेजेस, इस तरह के हैं, अगर उनका पालन किया जाए तो इसके द्वारा जो प्रॉपर रेफरल में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जो दूर देश में अगर कोई आदमी अकेले रह रहा है, अगर वो बीमार पड़े तो हम लोग समाज में सभी लोग एक परिवार की तरह हैं, अपने पड़ोसियों की, अपने मित्रों की मदद करें जब कभी भी थोड़े समय के लिए वो बीमार पड़ जाते हैं।
जी हमारे जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम चर्चा कर रहे हैं डेंगू बुखार कारण लक्षण और निवारक उपायों पर। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन। आप भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हमें फोन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, इस पर अपने सवाल भेज सकते हैं, और फोन नंबर है 2331444237116106। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और दिल्ली से अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं केशव प्रजापति जी। केशव जी पूछिए अपना सवाल।
हेलो मैम, नमस्ते।
नमस्ते,
दिल्ली से बोलना प्रजापति।
बोलिए बोलिए।
मैम मेरे सवाल है, जैसे कि डेंगू और मलेरिया एक साथ हो सकते हैं या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं कि हमें इससे पहले बचाव हम अपना कर सके इससे
बीमारियों से। जी डेंगू और मलेरिया बिल्कुल एक साथ हो सकते हैं, ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि एक समय में एक ही बीमारी होगा दूसरी बीमारी नहीं होगी। और इससे बचाव के लिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें, अपने आप को मच्छरों से काटने से बचाएं। इसके लिए आप सुबह से लेकर के शाम तक बहुत छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे घर से बाहर जब कभी भी निकले तो इस मौसम में पूरी बाजू वाले कमीज को पहने, नंबर एक। नंबर दो, अपने आसपास में कहीं भी पानी को जमा होने न दें, अपने घर में या अपने दफ्तर में, अपने जैसे कि विशेष तौर पर कूलर हो गया या एसी का कहीं पर भी पानी जमा हो रहा है तो उसे हर दिन आप साफ कर दें। और नंबर तीन, रात को जब कभी भी सोएं तो मच्छरदानी लगा करके सोएं। इन सभी छोटे छोटे कदमों के द्वारा आप डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया, ऐसे जो भी मच्छर काटने से होने वाली बीमारियां हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं।
एकदम बुखार होने की स्थिति में डॉक्टर साहब प्राथमिक क्या उपचार है इसमें?
देखिए, एकदम बुखार हो जाने की स्थिति में दो तीन महत्वपूर्ण चीज है। पहले इस सीजन में जब कभी भी हो तो बुखार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है पैरासीटामोल की दवाई लें। इसके अलावा दूसरे जो कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जैसे डिक्लोफिनेक सोडियम हो गया, ब्रूफेन हो गया, उन सभी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन सबों को लेने के बाद में प्लेटलेट के कम होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पहली ये बात हो गई। दूसरा, खुद से कभी भी मेडिसिन लेने से आप बचें। दिल्ली जैसे शहर में या और कहीं पर भी अब स्वास्थ्य सुविधा देने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, वो जरूर आपकी मदद के लिए आएंगे और आपको जो जरूरी जांच हो और जो जरूरी दवाई है वो आपको जरूर कराएंगे।
जी, दिल्ली से हमारे श्रोता काशवी हैं हमारे साथ। हेलो
जी, गुड इवनिंग मैम, मैं काशवी बोल रही हूँ दिल्ली से।
बोलिए
मैम, मेरा ये सवाल है कि जो डेंगू में जो फीवर आता है वो फीवर बार बार क्यों आता है?
जी, ये बात बिल्कुल सही है। डेंगू में जो बुखार होता है एक बार होने के बाद जो है जब शुरू होता है तो वो 5 दिनों तक लगातार बना रहता है, और पैरासीटामोल खाने के बाद भी बुखार जो है वो थोड़े समय तक ही कम हो पाता है। देखिए, इसका जवाब अगर एक विज्ञान के विद्यार्थी को अगर दिया जाए तो कुछ ऐसा, इसमें जो वायरिमिया होता है, जो वायरस होता है, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पायरोजेंस हम लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स निकलते हैं, जो कि 5 दिनों तक जबकि वायरस की मात्रा शरीर में रहती है, बनी रहती है, तो उसकी वजह से बुखार होता है। 5 दिनों के बाद जब कभी भी 5 दिनों के बाद शरीर के अंदर में वायरस की मात्रा कम होने लग जाती है, और जब ये कम हो जाता है तो स्वतः वायरस जो है वो खुद ब खुद जो फीवर जो है इसकी वजह से होता है वो कंट्रोल हो जाता है।
जी, और एक बार मान लीजिए कंट्रोल हो गया, उसके बाद दोबारा भी होने के चांसेस रहते हैं तो वो गंभीर स्थिति हो सकती है?
देखिए, बुखार एक बार जो पांच दिनों के बाद जो हो जाता है उसमें सेकेंड टेल ऑफ वायरल फीवर कहते हैं, वो थोड़े समय तक एक आधा दिन तक रह सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर बुखार अगर परसिस्ट कर जा रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई न कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया या बुखार के कोई दूसरे वजह हो सकता है। लेकिन एक बार मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में यह एक सेल्फ लिमिटेड इलनेस है, और जो कि 5-6-7 दिनों के अंदर में जो है बुखार पूर्ण तौर पर ठीक हो जाता है।
ये वायरल बुखार की श्रेणी में आता है, तो क्या ये श्रोताओं के लिए बताइए कि क्या ये संक्रामक भी है? घर में एक को हुआ तो दूसरे को भी हो सकता है?
देखिए, ये संक्रामक नहीं है, ये छींकने खांसने से या एक दूसरे को छूने से या फिर दूसरे बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा एक दूसरे तक को नहीं फैलता है। लेकिन एक व्यक्ति को अगर हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को इसलिए सजग रहना चाहिए कि उस व्यक्ति को जिस परिस्थिति में हुआ है, यानी आसपास कहीं न कहीं मच्छर जरूर हो रहा है, तो वहीं या उस मच्छर का कोई दूसरे जो मित्रगण मच्छर होंगे वो आपको काट करके इस बीमारी को फैला सकते हैं, तो इसलिए सजग होना चाहिए। लेकिन एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलने की संभावना बिल्कुल नगण्य रहती है।
ठीक है, हमारे अगले श्रोता हैं मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए।
हेलो सर, नमस्कार।
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 हम ये पूछना चाहते थे कि जो ये वायरस होते हैं, ये कीटाणु होते हैं, पनपते हैं, वो कैसे मार सकते हैं उनको?
आप मध्य प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं? लाइन करके
जी।
ये हो सकता है कोई ग्रामीण इलाका हो, तो किस तरह से, जैसे पहले से कहते थे पानी खट्टा है तो वहां पर मिट्टी का तेल डाल दें।
देखिए, सबसे ज्यादा जैसे मच्छर की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, तो उस लाइफ साइकिल के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये यूजुअली जो है इसमें 7 से लेकर 14 दिनों तक का समय रहता है। तो अगर 7, जैसे मच्छर का एक लार्वा होता है वो पानी के अंदर, फिर उसके बाद प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट ये मॉस्किटो होता है, उसके पहले मच्छर जो है के अंडे रहते हैं, तो अगर पानी इस दौरान में अगर ये रहता है और उस समय पानी को अगर हम लोग जमा ना होने दें, ये पानी, ये मच्छर कभी भी बहते हुए पानी में नहीं होता, जहां पानी जमा होता है वहीं पर वो लार्वा और इस तरह से होते हैं।
जैसे ग्रामीण इलाकों में खेतों के पास कहीं गड्ढा है उसमें पानी जमा हो गया है,
तो उसमें आप जैसे एयर के कांटेक्ट को कम करने के लिए, जैसा आपने ये कहा भी कि ये 2 बूंद जो है अगर हम लोग तेल दे दें, विशेष तौर पर मिट्टी का तेल दे दें, तो वो सरफेस पर पूरी तरह फैल जाता है और जो लार्वा है उसको लार्वा के टाइम में ही मार देता है।
ठीक है, तो इस तरह से। और इसमें डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जागरूकता बहुत जरूरी है
जी,
है ना, और साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत।
जिम्मेदारी को समझे तो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है।
खुद को बचाने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि साफ सफाई रखें और बहुत जागरूक रहें इस मौसम में कि कहीं पर पानी जमा तो नहीं है, और उस पानी को फिर वो किसी भी तरह से उसको जमा होने से रोके।
हमारे
जी, हमारे बहुत दूर से एक श्रोता है वेस्ट बंगाल से, अजय हमारे साथ। अजय जी पूछिए सवाल।
नमस्कार डॉक्टर साहब।
नमस्ते।
हमारे गांव में तो हर तालाब है, घर करके बाहर तालाब है, वहाँ हमें कितनी और ज्यादा सावधानी हमें लेनी पड़ेगी?
देखिए, तालाब में मूल तौर पर जो है वो पानी उसका बहता हुआ सा होता है, तो तालाब में ऐसा मच्छर के होने का ये चांसेस नहीं रहता। अगर फिर भी अगर तालाब में उस जैसा अगर ये हो रहा है, तो बीच बीच में जो है वो आपके नगर निगम वाले जो हैं या फिर आपके गांव के जो जो दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उसमें जो है वो मच्छर के को न पनपने देने वाली कीटनाशक दवाइयों का जो है वो छिड़काव करते होंगे, और इसके द्वारा जो है वो जो लार्वा जो है मस्किटो का जो है वो मर जाता होगा।
जी, एक डॉक्टर के नजर से आप ये क्या सलाह देंगे कि किस तरह का खान पान रखें या किस तरह के एहतियात रखें कि ये बीमारी से बचे रहें?
जी, बीमारी से बचे रखने के लिए जैसे हमने आसपास साफ सफाई, जागरूकता, इन सबों के बारे में बातचीत कर ली, मैं दोहराने के लिए भी सही एक बात को जरूर कहूंगा कि हर सप्ताह कम से कम सप्ताह का एक दिन बांध लें और कम से कम आधा घंटा समय लगाएं, अपने आसपास जो है 150-200 मीटर का चक्कर लगाएं, और कहीं पर भी पानी को अगर आप न जमा होने देते हैं तो आप जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, उससे बच सकते हैं। नंबर 2, आप अपने अंदर जो है बिल्कुल सही जानकारी को रखें। अप्रमाणिक स्रोत से जो कोई भी जानकारी होता है सोशल मीडिया पर, जो बुखार के संबंध में, अपने स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी है,
डॉक्टर साहब इसमें रोग प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम
जी,
या
मैं उसी पर आ रहा हूं। जी, देखिए, इम्यूनिटी एक दीर्घकालिक निवेश है, वो एक दिन में न बनता है और न ही बिगड़ता है, तो अच्छी इम्यूनिटी के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी बैलेंस डाइट हुआ और लंबे समय तक के लिए आप अपने आप को संतुलित भोजन करें और नियमित तौर पर व्यायाम करें, जो कोई भी बुरी आदत है सिगरेट शराब की उससे अपने आप को दूर रखें, डायबिटीज को कंट्रोल में करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी। कोई एक पर्टिकुलर दवा खाने से कभी भी इम्यूनिटी नहीं ठीक होता है। कोई एक पर्टिकुलर फूड, 4-5 दिन कोई फूड ले लिया उसके बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक निवेश है
जी।
तो अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। समय कह रहा है अब आपसे अनुमति ली जाए। चलने से पहले हमारे श्रोताओं के जवाब देने के लिए, डॉक्टर साहब और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर पीयूष रंजन जी, आपका आभार।
जी, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है आपके माध्यम से तमाम देश के श्रोताओं से जुड़ने का मौका।
और हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज की चर्चा से निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं की जानकारी बढ़ी होगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और दोबारा सुनने के लिए newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।